माधव जी, ये सब क्या है? राधिका फोन उठाते ही माधव पर भड़क गई, जिससे माधव चौंक गया। क्या क्या है राधिका? आपकी मम्मी मेरे घर क्यों आई हैं? राधिका ने सीधे ही सवाल किया। माधव के चेहरे के भाव अब जरा गंभीर हो गए। आपको नहीं पता? बात नहीं हुई क्या आपकी उनसे? माधव एकदम सामान्य था, पर राधिका को झटका सा लगा और अविश्वास से उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। मतलब आपको पता था? और अगर मैं कहूं कि मैंने ही उन्हें वहां अपनी पिछली गलती सुधारने और मेरे लिए आपका हाथ मांगने भेजा है तो? पर आपने कहा था कि हम बस दोस्त रहेंगे। राधिका बिफर गई। माधव से ऐसी उम्मीद नहीं थी उसे, और रुख पर नाराजगी के भाव उभरे थे। माधव अब भी गंभीर था। वो पहले की बात थी राधिका, मुझे अब आप अपनी जिंदगी और अपने घर में चाहिए। माधव जी, राधिका ने कुछ कहना चाहा, पर माधव ने उसकी बात काट दी। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। राधिका चुप हो गई। माधव ने संजीदगी से आगे कहना शुरू किया। राधिका, शादी तो आपको करनी ही होगी, और मैं भी सारी उम्र तो अकेला नहीं रह सकता, तो बेहतर है ना कि हम एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में चुने। माधव जी, राधिका के लब थरथराए, पर आगे क्या कहे समझ ना पाई। माधव ने ही बात आगे जारी रखी। राधिका, आपको शिकायत थी ना कि आपको मेरे काबिल न समझकर ठुकराया गया था? आज मैंने अपनी माँ को अपने लिए आपको मांगने आपके घर भेजकर ये साबित कर दिया कि मेरी नज़रों में आप हमेशा से मेरे काबिल थीं। अब आप बताइए, क्या अब भी मैं आपको आपके काबिल नहीं लगता? माधव जी, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, पर हम साथ नहीं हो सकते। यही कहना चाहती हैं ना आप? लेकिन मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। माधव जी, मुझ पर मेरी बहन और पापा की जिम्मेदारी है। राधिका के मन में सबसे पहले यही बात आई तो उसने कह दी, पर माधव ने बड़ी ही सहजता से उसकी वजह को अपने तर्क से ठुकरा दिया। मैं आपको आपकी सभी जिम्मेदारियों के साथ अपनाना चाहता हूँ। शादी के बाद मेरा परिवार आपका परिवार होगा और आपका परिवार मेरा। आपको मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, बस मुझसे जुड़े रिश्तों को अपनाना होगा। ये कैसे मुमकिन है? राधिका ने बेचैनी से पहलू बदला। अगले ही पल माधव का सवाल उसे निशब्द कर गया। क्यों मुमकिन नहीं? अगर बहू बेटी बन सकती है तो दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता? अगर एक लड़की शादी के बाद अपने पति के परिवार का ख्याल रखती है तो लड़का ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आप मेरा साथ दीजिएगा और मैं आपकी जिम्मेदारियों को पूरी करने में आपका साथ दूंगा। माधव जी, मुझसे नहीं होगा ये। राधिका की बेबसी भरी आवाज़ सुनकर माधव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। राधिका, मैं आपका साथ चाहता हूँ। अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। उन लम्हों को दिल से जीना चाहता हूँ जिन्हें कभी आपके साथ जीने के ख्वाब इन आँखों ने देखे थे। उन एहसासों को महसूस करना चाहता हूँ जिन्हें महसूस करने की किस्मत ने मुझे कभी इजाज़त ही नहीं दी। राधिका, मैं इस बार किस्मत से आपको छीनना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार किस्मत ने आपको मुझसे छीन कर किसी और की जिंदगी में शामिल कर दिया था। किस्मत ने जिसके नसीब में आपको लिखा उसने तो आपकी कद्र तक नहीं की थी, पर मैंने हर पल हर घड़ी अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी को महसूस किया था। और अब जब मुझे पास्ट में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिला है तो मैं अपनी ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी कमी को मिटाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूँ, वो परिवार जिसमें आपके और मेरे परिवार के साथ हम दोनों भी होंगे और आगे चलकर हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी उस परिवार में शामिल हो जाएंगे। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ राधिका, आपको वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो किस्मत ने आपसे छीन ली। अपनी ज़िंदगी के खालीपन को आपके साथ से भरना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपका साथ ही मेरी सच्ची खुशी है। इश्क है आप मेरा, आपकी छवि अपने दिल में बसाए मैंने इबादत की है इसकी। मेरे इश्क को मिला ये दूसरा मौका मैं यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आपसे जितनी मोहब्बत करता हूँ उससे कहीं ज्यादा इज्जत करता हूँ आपकी। बस एक मौका चाहता हूँ आपसे, क्या आप मुझे और मेरी मोहब्बत को ये एक मौका नहीं दे सकती? अपने दिल से पूछिए राधिका, क्या वो मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं करता? क्या वो नहीं चाहता कि आप अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़े, मेरे साथ खुश रहें? क्या आपके मन में मुझे लेकर कोई एहसास नहीं? राधिका मौन साध चुकी थी और आज माधव ने खुलकर अपने प्यार का इजहार कर दिया था। फिर भी जब राधिका की खामोशी नहीं टूटी तो पल भर ठहरते हुए माधव ने ही आगे कहा, जानता हूँ आप अभी शायद मेंटली शादी के लिए तैयार नहीं हैं और आपके दिल की गहराइयों तक ये बात बैठी हुई है कि आप मेरे काबिल नहीं हैं। पर मेरी नज़र से देखिए राधिका, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप ही मेरे काबिल रहीं। सब इतना अचानक हुआ, शायद इसलिए आप इतना परेशान हैं। तो मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। आपको वक्त चाहिए तो जितना वक्त लेना है ले लीजिए, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बस फ़ोन रखने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि इस बार अगर कोई लड़की अर्धांगिनी बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी तो वो राधिका होगी। अब ये फ़ैसला राधिका पर है कि वो माधव के प्रेम को स्वीकार करती है या उसकी किस्मत में ज़िंदगी भर की तड़प, अकेलापन और अधूरी मोहब्बत की कसक लिखती है। माधव ने फ़ोन काट दिया था और राधिका सुनसी बैठे रह गई थी। माधव के कहे शब्द याद करते हुए उसका दिल बेचैनी से ज़ोरों से धड़क उठा था। खुश होना चाहता था वो, पर अजीब से दर्द और उदासी की छाया उस खुशी पर मंडरा रही थी। माधव की बातों ने उसे मजबूर कर दिया था उसकी ओर कदम बढ़ाने पर, लेकिन कुछ था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था।
इस बात को 2 हफ्ते बीत गए थे पर अब तक राधिका किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। अंजलि तो रोज उसे फोन करके समझाती रहती थी पर घर पर किसी ने इन दिनों में उससे कोई बात नहीं की थी। अप्पू बात करना चाहती थी पर आशुतोष जी राधिका को वक्त दे रहे थे, शायद उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। इतना आसान नहीं था जिन ख्वाबों को बड़ी ही बेरहमी से उसकी आंखों से नोचकर फेंका गया हो उन्हें फिर से आंखों में सजाना, वो भी तब जब वक्त और हालात इस कदर बदल गए हों और आज पर अतीत का काला साया मंडरा रहा हो। राधिका एक बार फिर चुप चुप सी रहने लगी थी, खुद में ही खोई रहती थी, मन में विचारों में मंथन चलता रहता था। रह रहकर अनुपमा जी और माधव की बातें याद आती थी फिर भी वो कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। माधव और राधिका की बातचीत भी बंद थी पर माधव धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था। आज संडे था, राधिका आशुतोष जी की गोद में सर रख कर लेटी थी। राधु बेटा, आपने माधव जी के बारे में क्या सोचा है? अब वो काफी वक्त हो गया, इतने दिनों तक उन्हें टालना ठीक नहीं है। आखिरकार आज आशुतोष जी ने बात छेड़ ही दी थी। राधिका ने बच्चों जैसे अपनी बाहों को उनकी कमर पर लपेट दिया और उनकी गोद में सर छुपाते हुए मायूसी भरे स्वर में बोली, पापा मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। आशुतोष जी उसका सुनकर यूं मुस्कुराए जैसे पहले से जानते थे कि उनकी बेटी यही जवाब देगी उन्हें, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, सालों पहले जब उनका रिश्ता आया था तब हमने आपको कहा था कि वो हमारे जैसे हैं और हमारी नज़र में वो आपके लिए बेहतरीन जीवन साथी हैं। बिल्कुल वैसे हैं जैसे लड़के की तलाश हमें थी आपके लिए, और ये हमारा विश्वास था कि आप उनके साथ खुश रहेंगी। उस बात को तो सालों बीत गए पर हमारी राय उन्हें लेकर आज भी वैसी ही है। अब तो हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है और हमें आज हमारी आपके लिए पसंद पर गर्व है।
एक पिता होने के नाते हम आज भी यही कहेंगे कि माधव जी आपके लिए सही जीवन साथी हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे भी आपको इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए, आप उनके साथ खुश रहेंगे। पर हम अपनी राय आप पर नहीं थोपना चाहते, हम चाहते हैं कि जिंदगी आपकी है तो इससे जुड़ा ये फैसला भी इस बार आप खुद लें, बिना किसी के दबाव में आए। जो आपका दिल कहे वो करें, सिर्फ अपनी खुशियों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। आशुतोष जी एक पिता और एक दोस्त बनकर उसे समझा रहे थे। राधिका उठकर बैठ गई और बेबस और लाचार निगाहों से उसे देखने लगी। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब जो हो रहा है मैंने कभी नहीं चाहा था और ना ही सोचा था, इसलिए अब मैं कुछ समझ नहीं पा रही। राधिका खुद में ही उलझी हुई थी। आशुतोष जी तो चुप थे पर अप्पू अब और खामोश ना रह सकी और फट से बोल पड़ी, दी इतना क्या सोच रही हो यार, माधव जीजू ने अपनी खड़ूस माँ को भेजकर आपका हाथ मांगा है, झट से हाँ कहो और फट से शादी करके विदा हो जाओ। इसी बहाने हमारा आप जैसी जेलर से पीछा तो छूटेगा, आगे की जिंदगी आपको जीजू झेलेंगे तो हमारी जिंदगी तो ऐश से कटेगी। अप्पू ने मजाकिया अंदाज में कहा और आंखें मटकाते हुए खिलखिला उठी, साथ ही आशुतोष जी की ओर हाथ भी बढ़ा दिया। क्यों पापा, वो उनका भी साथ चाहती थी, जानकर छेड़ रही थी वो राधिका को, और चिढ़ते हुए राधिका ने उसका कान पकड़कर ऐंट दिया, ऐश की बच्ची कुछ वक्त बाद शादी है तेरी, मैं तुझे तेरे ससुराल भेज दूंगी, फिर जितनी ऐश करनी हो वहां करना अपने मियाँ के साथ, फिर मैं यहाँ सुकून से रहूंगी। शैतान अप्पू दर्द से बिलबिला उठी और उससे अपने कान को छुड़वाते हुए तुनक कर बोली, रहने दीजिए दीदी, मैं कोई शादीवादी नहीं करने वाली, पहले मैं आपको इस घर से विदा करूंगी, उसके बाद ही अपने बारे में सोचूंगी। आपको क्या पता, आपकी शादी करवाकर आपको आपके पति को सौंपना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, मुझ मासूम सी बच्ची के सर पर इतनी अहम जिम्मेदारी है कि चिंता से मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। फिर उसकी नौटंकी शुरू हो चुकी थी, शक्लें तो ऐसे बना रही थी जैसे सच में उस मासूम बच्ची पर कितना अत्याचार हो रहा हो और बेचारी जिम्मेदारियों के बोझ की मारी कितनी दुखी थी। उसका नाटक देखकर राधिका खींच उठी, हाँ हाँ तुम तो हमारी अम्मा हो ना, इसलिए हमारी शादी की चिंता में तुम्हारी रातों की नींद हराम है। अप्पू ने तपाक से उसकी बात का विरोध किया, अम्मा कहाँ से हो गई, अभी तो मैं जवान हूँ और आपसे छोटी भी, मैं तो आपकी बहन हूँ और अपनी बड़ी बहन की जिंदगी की इतनी चिंता है मुझे कि लगता है आपसे पहले मैं ही बुढ़िया हो जाऊंगी। सोचो तो जीजी, भरी जवानी में मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ गए तो कौन ब्याह करेगा मुझसे, वही करेगा जिससे रोज रात को छुप छुप कर बातें किया करती हो, बेचारा तो अभी से शादी को उतावला हुआ जा रहा है, तुम ही उसे तड़पा रही हो, उसके सब्र का इम्तिहान ले रही हो। राधिका अपनी बात भूलकर अब अप्पू को छेड़ने लगी थी पर अप्पू कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने नाराजगी से गालों को फुलाया, देखो जीजी झूठ ना बोलो, छुपकर बात नहीं करती और उसके सब्र का इम्तिहान आप ले रही हैं, मैं नहीं, मैंने तो बेचारे पर तरस खाकर कब की हाँ कर दी, आप ही हमारी लव स्टोरी में विलन बनकर बैठी हैं, ये नहीं कि अपना भी घर बसाएं और अपनी छोटी बहन का भी घर बसने दे, बेकार की जिद पकड़े बैठी हैं कि शादी नहीं करनी, खुद तो अकेले रहेंगी ही, मुझे भी अकेलेपन में ही अपने बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, एक तरफ बेचारे मेरे प्यारे जीजू आपके इंतजार में तन्हा तड़पते रहेंगे तो दूसरी तरफ बेचारे निशान जी मेरी राह तकते तकते बुढ़ा जाएंगे। मजाक मजाक में अप्पू सब कह गई थी। राधिका के मुस्कुराते लब सिमट गए और उसने व्याकुलता से उसे पुकारा, अप्पू। अप्पू जो अब तक मजाक कर रही थी राधिका को छेड़ रही थी,
अब एकदम से गंभीर हो गई। दीदी, माधव जी जैसा लाइफ पार्टनर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप भी तो सालों से पसंद करती हैं उन्हें। किस्मत ने दूसरा मौका दिया है आपको। अगर इस बार आपने खुद अपनी किस्मत को लात मारी, माधव जी को खुद से दूर जाने दिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इतना कहकर अर्पिता वहां से चली गई और उसकी बातें राधिका को निःशब्द कर गईं। आशुतोष जी भी कुछ कह ना सके, क्योंकि अर्पिता ने गलत तो नहीं कहा था। राधिका एक पल और वहां न ठहर सकी, सीधे अपने कमरे में चली आई। इधर राधिका ने रूम में कदम रखा और उसका फोन बज उठा। आहाना का नाम स्क्रीन पर देखकर राधिका ने कॉल रिसीव कर लिया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुईं, फिर आहाना ने उसकी आवाज में उदासी और परेशानी महसूस करके सवाल किया तो राधिका ने उसे सब बता दिया। राधिका, देखो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है तो फैसला भी तुम्हें ही लेना होगा। पर तुम्हारी दोस्त होने के नाते हम तुम्हें इतना जरूर कहेंगे कि तुम किसी की मत सुनो, बस अपने दिल की सुनो। उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। क्या माधव से शादी करके उनके साथ अपना एक छोटा सा परिवार बनाना तुम्हारा सपना नहीं था? खुद से सवाल करो कि क्या तुम्हारे मन में उन्हें लेकर कोई एहसास नहीं? क्या जब उनकी माँ तुम्हारे घर आई उनके रिश्ते लेकर, तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या तुम माधव जी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, उन्हें अपना हमसफर नहीं बनाना चाहती? अगर कुछ है जो तुम्हें उससे ऐसा करने से रोक रहा है, तुम्हारे मन में कोई भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो तुम खुद खुद में परेशान होने की जगह माधव जी से एक बार साफ साफ बात कर लो। टू बी कंटिन्यूड। क्या करेगी राधिका? ऐसी कौन सी बात है जो उसे माधव की ओर कदम बढ़ाने से रोक रही है?